भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है।
तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी।
हेलो सौरभ, कैसे हैं आप?
बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ।
सौरभ, आज किस चीज पर चर्चा की जाए? बहुत दिनों से वैसे हमने टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई पुलियाबाजी नहीं की है।
बिल्कुल, एक मैं जो काफी सारे इम्पोर्टेंट टेक ट्रेंड्स को फॉलो करता हूँ और मुझे लगता है ये बड़े होने वाले हैं, उनमें हम ऑटोनोमी के बारे में बात कर चुके हैं, बिटकॉइन के बारे में कर चुके हैं, AI के बारे में कर चुके हैं, एक ही बड़ा ट्रेंड बचा हुआ है।
वो क्या है?
वो है वर्चुअल रियलिटी।
हाँ, ये वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, इतनी बार मैंने सुना है पर थोड़ा मुझे अभी भी ढंग से अंदाजा नहीं है क्या है ये सब।
हाँ, तो इस पे आज चर्चा की जाए ना।
बिल्कुल, तो इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे पास परफेक्ट गेस्ट है, मेरे अजीज दोस्त विनीत। विनीत एक बहुमुखी प्रतिभा वाले इंसान है वैसे, और अपना पॉडकास्ट भी चलाते हैं बास्केटबॉल पर, और वो फाउंडर है टेलीपोर्ट मी के, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो वर्चुअल रियलिटी और AR पर उन्होंने जो ऐप बनाया है वो पूरे विश्व में बहुत पॉपुलर हो चुका है। तो विनीत, स्वागत है आपका पुलियाबाजी में।
हाय प्रणय एंड सौरभ।
तो विनीत, सबसे पहले शुरू से शुरू करेंगे ना, ये पहले प्रणय, ये VR को हिंदी में क्या बोलेंगे?
क्या बोल सकते हैं इसे? काल्पनिक सच्चाई।
काल्पनिक सच्चाई, ये एकदम बढ़िया वर्ड लग रहा है। ऐसे काल्पनिक और सच्चाई, जैसे वर्चुअल और रियलिटी। हाँ। जैसे ये वैसे मायावी दुनिया टाइप होता है ना, माया है जैसे। हाँ। इसको बोलते हैं, मुझे लगता है कि एकदम माया शब्द जो है वर्चुअल रियलिटी के लिए बना है जैसे।
हाँ, ये अच्छा है। और मुझे तो ये वर्चुअल रियलिटी से मतलब वो संजय और महाभारत ऐसा कुछ याद आता है।
नहीं, वो तो मुझे थोड़ा रिमोट प्रेजेंस वाला चीज लगता है।
हाँ, वो रिमोट प्रेजेंस हो गया।
संजय और महाभारत तो रिमोट प्रेजेंस हो गया, लेकिन ये जो है ये मुझे लगता है जैसे कि जिसको हम माया बोलते हैं, लेकिन वो क्योंकि वर्ड इतनी जगह यूज होता है तो वो अलग अलग चीजों से लोग उसे कंफ्यूज कर सकते हैं, पर उसका सही शब्द तो वैसा ही है मेरे ख्याल से।
हाँ, तो माया भी सच्चाई के अपेंस।
हाँ, जैसे जैसे मैट्रिक्स मूवी में जो थी वो एक तरह से वही थी ना, कि सब माया है, और वो जो माया थी वो टेक्नोलॉजिकली वर्चुअल रियलिटी निकलती है।
हाँ।
तुम क्या बोलते हो विनीत, तुमको माया भी अच्छा लग रहा है कि काल्पनिक अच्छा लगता है?
मेरे हिसाब से तो माया भी बेस्ट है। आई थिंक जो रियलिटी को थोड़ा सा तरोड़ मरोड़ के, यू नो, इट शोज यू अ डिफरेंट थिंग।
आप तरोड़ मरोड़ सकते हैं।
हाँ, तो
जो है नहीं वो भी देख सकते हो, और जो नहीं है उसको है बना सकते।
हाँ, तो वो आई थिंक जो पावर है वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का, तो वो है कि जो रियलिटी है वो व्यूअर के बेस्ड पे होता है। तो आई थिंक माया, आई फील बेटर वर्ड है उसके लिए।
हाँ, तो ठीक है, ये माया भी सच्चाई ही बोलते हैं इसको। तो विनीत, सबसे पहले तो बताइए VR AR का मतलब क्या है सिंपल भाषा में, और इसका एक कुछ उदाहरण दीजिए जिससे कि हमारे लिसनर्स को पता पड़ पाए।
हाँ, तो AR और VR बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि डिजिटल इंफॉर्मेशन को ह्यूमन आइज के सामने डालना। तो दैट्स द आइडिया ऑफ जो बोलते हैं माया, कि तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या देख रहे हो। सो इस टेक्नोलॉजी का कोर कॉन्सेप्ट है कि डिस्टॉर्शन ऑफ योर व्यू। द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लोज टू मोस्टली विजुअल सेंस, जो अभी तक आया नहीं है। लाइक इफ यूजुअल टेक्नोलॉजी को देखोगे तो मोस्ट टेक्नोलॉजी इज मोस्टली टाइप्ड इन, और थोड़ा अभी पॉडकास्ट आया है तो थोड़ा ऑडियो भी आया हुआ है। द बेसिक विजुअल टेक्नोलॉजी है फोटोज, बट इट डजंट कम अप एज फूलिंग योर आई। तो बैक इन द 1800s जो इन्होंने टेक्नोलॉजी शुरू किया था, कि आई थिंक पता नहीं प्रणित आपको याद है कि नहीं, कि गोवा में वो सप्ताह होता था, सप्ताह में वो एक ऐसा कैमरा मिलता था छोटा वाला। और उसके अंदर यू नो यू कुड सी बॉलीवुड के मूवीज को ऐसे दबा दबा के, यू कुड सी इट। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, पर वो कार्निवल में मिलता था गोवा में, और
बायोस्कोप टाइप।
हाँ, पर उसको बुलाते थे व्यू मास्टर। तो दैट्स वहां से शुरू होके व्यू मास्टर, विच इज हाउ डू यू लाइक यू नो टेक योर एंटायर विजन एंड बेसिकली चेंज योर रियलिटी।
तो जैसे हम लोग वीडियोस देखते हैं वो भी तो एक तरीके से यही चीज हुई ना।
तो द प्रॉब्लम विद वीडियोस ये होता है कि पेरिफेरल विजन इज ऑलवेज एक्टिवेटेड, सो फॉर यू टू बिलीव व्हाट यू आर सीइंग इज रियल आई डोंट नो पेरिफेरल विजन का क्या होता है हिंदी में बोलते हुए, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट
जो भी आपको साइड से दिख रहा है, वीडियो में एक दिखता है कि एक सामने पर्दे पे कुछ दिख रहा है ना,
तो
एक सामने स्क्रीन या पर्दा है, और जबकि वीआर जो है वो आपको जिसको कहते हैं इमर्सिव है, आपको हर तरफ से घेर लेगा।
तो अगर मैं ये कहूं कि वीआर एक बहुत बड़ा पर्दा है, इतना बड़ा पर्दा कि आपको पर्दे के अलावा और कुछ ना दिखे, तो क्या ऐसे ही होगा? हम लोग सब लोगों ने फिल्म देखी है थिएटर में और देखा है बड़ा पर्दा, मान लीजिए आप पर्दे के इतने नजदीक है कि आपको पेरिफेरल विजन में कुछ ना दिखे, बस वो पर्दा दिखे, तो क्या वो वीआर हो जाए?
वीआर नहीं होगा बिकॉज ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ योर आईज। तो बेसिकली योर आई नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज वन, सो इफ यू वेरी क्लोज टू अ स्क्रीन एंड द स्क्रीन इज लाइक, अभी तुम थिएटर में हो तो योर आईज कैन नॉट रिजॉल्व व्हाट इज ऑन द स्क्रीन। So that is a very important concept of virtual reality and augmented reality. And the reason why abhi augmented reality abhi tak aaya nahi hai properly, ki jo eye ka resolution hai, it's very difficult to match with today's LCD screens. So
eye ka kitna resolution hota hai? Hum ye itna aise bolte rehte hain, ye phone abhi itne megapixel ka, itne ka, mujhe to lagta bekar hai, itne high megapixel karte rehte hain. Lekin aisa nahi, tum jaisa bol rahe ho, aisa hai nahi kya? Aisa aur humko 4K, 1080p, HD, full HD, ye eye ka kitna HD rehta
hai? Eye ka abhi main dekh raha hu, Google ki hai maine jaldi se, to it's like 576 megapixels.
Kya aap baat kar rahe
ho? Haan.
Aye teri.
So it is about 12 times an iPhone camera. वो रेजोल्यूशन फिगर आउट नहीं कर लेते हैं, तुम कितना भी उसको लाइक
बेवकूफ बनाओ,
हाँ बेवकूफ बनाओ, आई पकड़ लेता है उसको। तो दैट इज द की इज फिगरिंग आउट जो तुम देख रहे हो, दैट्स द सेम रेजोल्यूशन एज व्हाट द आई कैन सी। And then is
तो हम असली दुनिया 570 मेगापिक्सल में देखते हैं नॉर्मली।
तो आप कह रहे हैं कि जो पिक्चर मूवीज देख रहे हो आप, वो इतने मेगापिक्सल वाली नहीं होगी, वो रेजोल्यूशन मैच नहीं होगा, तो आपको सच्चाई नहीं दिखेगी, तो मायावी दुनिया नहीं लगेगी।
आपने एक अच्छा पॉइंट बोला। तो बेसिकली अगर मैं कहीं एक स्क्रीन एम्बेड कर दूं, बेसिकली कैसे दीवार के अंदर स्क्रीन फिट होते हैं, तो अगर वो 500 मेगापिक्सल के आसपास का नहीं है, तो मेरी नजर घूम रही होगी, तो मैं पकड़ लूंगा कि ये असली दीवार थी और ये अभी तो स्क्रीन आ गया कहीं ना कहीं, जबकि वो इतनी क्लोज होगी अगर, तो मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। फिर तो सारी दुनिया में मिक्स कर सकता हूँ, स्क्रीन और दुनिया को मैं मिक्स कर दूंगा जब हमारी इतनी हाई रेजोल्यूशन हो जाएंगी।
और ये जो डिफरेंस है, तुम यू कैन ऑल्सो फिगर आउट व्हेन यू आर लुकिंग एट अ वेरी क्या बोलते हैं हाई रेजोल्यूशन टीवी स्क्रीन compared to a low resolution TV screen, you'll see that the high resolution TV screen mein you can see like the picture moves a little bit slowly than the low resolution one, and that is because your eye is in sync with how everything is moving, slightly more in sync. So ye tum notice kar lena ki agar tum wo purana movie TV dekh rahe ho, everything seems blurry, everything seems moving fast, even if you look at jo old footage hai, you'll see that everything is kind of more rapid, more faster. And you look at today's, agar tum koi bhi dekh lo, you take any, you look at this.
Interesting hai. Ye maine bahut purani mein dekha tha, par wo mujhe lagta tha kyunki unke shayad camera bekar hote the, ye screen bekar hote the, aisa
you look at the same thing in a kya bolte hai high resolution. To wahi hai na ki where does the resolution reach your eye, right? तो एक तो वो होता है कैप्चर पॉइंट पे, दूसरा होता है डिस्प्ले पॉइंट पे। तो
अभी अच्छा, दोनों इम्पोर्टेंट है।
हाँ हाँ हाँ, तो तुम अगर बहुत ही गंदा फोटो लोगे तो तुम कितना भी डिस्प्ले में डालो मैटर नहीं होगा। तो इसलिए अभी हॉलीवुड में बहुत वो क्या बोलते हैं, मोस्ट मूवीज आर शॉट विद 3D कैमरास। तो द रीजन फॉर दैट इज, एक बार तुमने 3D कैमरा में तुमने शूट कर लिया, तो यू कैन यूज इट फॉर 3D स्क्रीन, यू कैन यूज इट फॉर एज अ 3D मूवी। और जो तुम डेप्थ पकड़ते हो उसको तुम पोस्ट प्रोसेसिंग में यू नो यू कैन मूव द कैमरा विद इन द स्क्रीन, विद इन द सीन इटसेल्फ। तो एक बार तुमने 3D में कैप्चर कर लिया सीन को, तो एक होता है तो ओरिजिनल कैमरा पकड़ लेता है पूरा सीन, और फिर एक वर्चुअल कैमरा होता है, तो उस वर्चुअल कैमरा में तुम अगर वो सीन तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तो वर्चुअल कैमरा में यू कैन लाइक मूव इट टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो
ओके, तो डायरेक्टर बेसिकली मूवी जो है शूट करने के बाद जो एडिटिंग सिर्फ आप टाइम स्लाइस करते थे, अभी तो स्पेशल एडिटिंग भी कर सकते हैं।
तो अभी सारे बॉक्स ऑफिस मूवीज आर शॉट इन 3D कैमरास।
वाओ, ये पता ही नहीं।
ओके, ये तो काफी इंटरेस्टिंग हाँ चीज तुमने बोली कि ये तो एडिटर का अभी रोल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डायरेक्टर या एडिटर बेसिकली एडिटिंग टेबल पे पूरी मूवी की कल्पना ही चेंज कर सकते
तो और ये चेंज हो रहा है बहुत सिनेमा में। अगर तुम देखोगे तो इफ यू लुक एट अ टिपिकल ब्लॉकबस्टर मूवी शूटिंग उनका 90% ऑफ इट इज इन ग्रीन स्क्रीन।
हाँ वो तो हमने देखा आजकल लोग दिखाते हैं वो कि भैया शूटिंग कैसी हो। हैरी पॉटर के देखे मैंने कि शूटिंग कैसी हो रही थी और असली कैसा है। वो शूटिंग देखो तो हंसी आती है क्योंकि कुछ होता नहीं है, हरे कपड़े पे खड़े होकर डांस कर रहे होते हैं सब।
तो वहां तक पहुंच गया अभी जो बोलते हैं माया जो बोलते हैं ना, तो माया अभी कैप्चर पे पहुंच गया है कि तुम कुछ भी कैप्चर कर लो अभी पोस्ट प्रोसेसिंग में तुम उसको कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, सो द कैप्चर पार्ट इज लाइक प्रणय सेड इज फुल्ली माया। तुम क्या कैप्चर कर रहे हो, तुम क्या दिखाते हो इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अभी आ गया है यू नो यू हैव दीज फेक वीडियोज जो अब देखे होंगे आपने ट्विटर पे नहीं तो फेसबुक पे डीप फेक्स बोलते हैं।
डीप फेक्स
तो वो है AI का जो पार्ट आता है उसमें विजुअल कंप्यूटिंग में। तो AI प्लेज अ ह्यूज पार्ट इन क्या बोलते हैं उसे रियल टाइम change of visual communication. So AI and AR are very closely related in a lot of ways. So AR ka do parts hota hai, ek to hai the physical part of it which is cameras and resolution screens and all that stuff, and then is the data part of it, and AI plays a huge part in the data part of it. So
तो विनीत पहले ये बताइए कि VR AR में फर्क क्या है।
तो VR AR में फर्क ज्यादा नहीं है, कॉन्सेप्चुअली ज्यादा नहीं है, पर आजकल बिकॉज क्या बोलते हैं उसे कंज्यूमर को एजुकेट करना है तो द जनरल परसेप्शन इज कि VR इज इन अ क्लोज्ड सिस्टम फुल्ली इमर्सिव एंड AR इज इन अ पार्शियल इमर्सिव सिस्टम विच इज ऑगमेंटिंग द डिजिटल वर्ल्ड ऑन टू द रियल वर्ल्ड।
हाँ तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अगर मैं एक हेलमेट पहन रहा हूँ और हेलमेट की स्क्रीन पर जो वाइजर है उस पर मुझे अगर स्क्रीन पर कुछ और इन्फॉर्मेशन दिख रही है, जैसे कि मान लीजिए जो गूगल मैप्स में मैं देखता हूँ कि मुझे राइट टर्न लेना है यहाँ पर, वो अगर मुझे मेरे हेलमेट स्क्रीन पर दिखने लगे तो वो सुपर इम्पोज हो रहा है मेरे रोड के ऊपर, तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी हो जाएगा।
यस यस दैट इज ऑगमेंटेड।
और एकदम ही सिंपल एग्जांपल जो शायद बहुत लोग करते ही हैं, जैसे जो स्नैपचैट में वीडियो आते हैं फिल्टर वगैरह जिसमें आप कैमरे के थ्रू देखो तो आप कोई भी चीज नचा सकते हो या कुछ कर सकते हो, तो वो भी एक तरीके का। या फिर आप अपनी फोटो में अपने ऊपर सींग लगा लेते हो, दाढ़ी मूछ लगा लेते हो, वो भी एक तरीके का ऑगमेंटेड रियलिटी है।
वो ऑगमेंटेड रियलिटी है, ठीक है।
तो लेकिन मैं भी विनीत से सहमत हूँ, ये जो ये जो बारीकी है ये थोड़ी ये तो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस हो गए कि एक में आप सिर्फ दुनिया को एक स्क्रीन के थ्रू देख रहे हो या VR में पूरा इमर्सिव है, पर ये काफी कंटिन्यूस चीज है।
ये इमर्सिव मतलब क्या, ऐसे गोता लगाना?
हाँ, चारों तरफ से ढक दिया तुमको माया ने।
तुम्हारा जो आई रेजोल्यूशन है वुड बी द सेम रेजोल्यूशन एज व्हाट तुम जो स्क्रीन पे देख रहे हो, तो टेक्निकली तुम क्या देख रहे हो तुम्हें वो पता ही नहीं है, और सो वेदर इट्स वीआर और एआर it doesn't matter. That's basically why they are not different. तुम्हें पता भी नहीं कि तुम क्या देख रहे हो, and that goes back to the जो सौरभ ने बोला था मैट्रिक्स का जो आइडिया है कि तुम्हें पता भी नहीं क्या चल रहा है, तो वो VR है ना, पर तुम्हारा ब्रेन जो देख रहा है रियल लाइफ में वो AR है।
या फिर अगर स्टार ट्रैक दो लोग देखते हैं उसमें वो हॉलो डेक होता था,
हाँ
वो भी एक तरीके का VR है बेसिकली, जहाँ पे आपको लगेगा कि आप वो मतलब बड़ा एडवांस टाइप का वैसा भी नहीं है हमारे पास कि जहाँ आपको लगता है आप घोड़ा दौड़ा रहे हो जंगल में घूम रहे हो।
हाँ,
तो कोई स्क्रीन भी नहीं है।
हाँ, वो भी है
आपके पास है ना, उसमें तो कोई स्क्रीन भी नहीं, और वैसा कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर अभी बना नहीं है पर वो प्रणय काफी इंटरेस्टिंग आइडिया। लोग कहते हैं कि स्क्रीन होने की जगह वो जो मायावी छवि है वो सीधे तुम्हारे रेटिना पे बनाएंगे।
वो भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटीज बहुत है। कॉन्टैक्ट लेंसेज के अंदर बायोनिक स्टफ
भी लगा सकते हो। ऐसा तुम कुछ बना रहे हो क्या विनीत? मजा आया अगर ऐसा कुछ।
नहीं यार, अब तो नाम तो हमने वैसे डाला टेलीपोर्ट मी करके, पूरा फ्यूचरिस्टिक सोचा था ऐसे कुछ हुआ, पर टाइमिंग इज आल्सो लाइक अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। यू कैन बी टू अर्ली और यू कैन बी टू लेट। तो हम जो कर रहे थे स्टार्टिंग में बहुत अर्ली था, अभी अभी थोड़ा सा पिकअप हो रहा है मार्केट, पर फिर भी जो सबसे बड़ा मार्केट है एआर और वीआर के लिए वो अभी भी वो है लेंसेज, इंस्टाग्राम लेंसेज, स्नैपचैट लेंसेज, पर सो इट्स नॉट रियली यूज एनीवेयर. तुम जहां भी देखोगे इतना कुछ यूज केस हुआ नहीं है. लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं पर फूलिंग द आई इज सच अ प्रॉब्लम.
उतना बड़ा नहीं हुआ जैसा सोचा था. तो ये प्रणय, इवन मैं भी अराउंड 5 साल पहले ना मैंने ऐसे बड़ा बेट लिए थे कि भाई एक ये वीआर और एक ये एआई, ये दो चीज बहुत बड़ी होने वाली है. लेकिन 5 साल में एआई वगैरह तो बहुत आगे निकली, लेकिन वीआर का जो थोड़ा प्रॉमिस था वो उतना रियलाइज हुआ नहीं. जो सोचा, जितने सपने थे सबके, उतने बने नहीं है.
वो तो प्रॉब्लम हो गया ना
विनीत. इसका एक कारण ये है क्या कि हमारी आंखें इतनी अच्छी हैं कि उन्हें बेवकूफ बनाना शायद थोड़ा मुश्किल है.
हाँ, वही सबसे बड़ा वही प्रॉब्लम है. और पूरा जो टेक्नोलॉजी का जो स्विंग है ना, तो वो पूरा बेस होता है जो माइक्रो प्रोसेसर्स का, जो द कर्व, द साइजेस कीप डिक्रीजिंग एंड कंप्यूटर
मोर्स
लॉ. हाँ, तो उस पे डिपेंडेंट है. और अगर तुम देखोगे अभी द कैमराज एंड प्रोसेसिंग हैज नॉट रीच दैट स्टेज. मे बी इन अ कपल ऑफ इयर्स इट विल रीच इट, पर आई थिंक इट्स गोना बी अ स्लो प्रोसेस अप टू वेयर. And I hope, you know, even though mera jo company hai pura AR VR immersive technologies pe kaam karta hai, par total dilemma hai mere dimag mein ki is this good for us or bad for us, like all technologies, right? Ki aur, you know, abhi right now as of today the sabse bada company jo hai kar raha hai AR VR mein wo hai Facebook. Aur tum, you know, you have to ask yourself ki are you helping Facebook? Or are you not helping Facebook at every point of building the product? Or hamara company jo hai, hamara sabse famous product hai Panorama 360, jo hai ek 360 capture app. To 2016 mein Facebook launched the capture of 360 photos within their camera, within their app natively. I don't know if you have, you know.
Yes, yes.
Aur ha, usse pehle unhone hame पर तभी भी वही कनंड्रम था कि अगर हमने बेच दिया तो यू नो फेसबुक क्या कर सकता है उसके साथ. और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सारे एआर वीआर टेक्नोलॉजी फोरम्स में कि अभी सबसे बड़ा कंपनी है फेसबुक, और एनीबडी हु कैन लाइक ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वेयर वी आर टुडे टू यू नो अ वर्ल्ड वेयर एआर एंड वीआर इज प्रीडोमिनेंटली द बिगेस्ट technology that exists. Abhi tum dekho corona virus hua China mein, people couldn't go to work, so a lot of like remote VR products started selling in China.
हाँ, so जैसे कि एक ये हम लोग imagine कर सकते हैं कि अभी generally लोग क्या करेंगे, Zoom meeting या फिर WebEx से join करेंगे meeting. पर अगर VR headsets होंगे इतने जबरदस्त, तो उन्हें ऐसे लगेगा कि हम लोग actually एक दूसरे के नजदीक बैठे हैं जबकि वो अपने घर से काम कर रहे हैं.
हाँ, exactly.
जैसे आपने वो स्टार वॉर्स में तुमने मीटिंग देखी होगी ना, जहाँ सब लोग बैठे होते हैं एक टेबल पे, लेकिन उसमें से आधे ही असली होते हैं.
और अब मैं राज कॉमिक्स वाला इंसान हूँ, आप स्टार वॉर्स की बात कर
अभी राज कॉमिक्स में ऐसा सब होता था कि नहीं, मुझे याद नहीं है, नहीं होता था ये सब, पर स्टार वॉर्स में ऐसा होता था.
अच्छा
प्रणय, मेरा लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, मेरा सिर्फ ये मानना नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजी तो ठीक है, एक एक टेक्नोलॉजिकल भी इश्यूज, फंडामेंटल इश्यूज भी हैं कि हम जितना सोचते थे कि हमें पता है इंसान को बुद्धू बनाने के लिए क्या क्या लगता है, उससे शायद ज्यादा लगता है. तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी जरा आगे थी, हम खुद अभी समझ रहे हैं कि इंसान कैसे काम करता है अच्छे से. लेकिन अभी भी जिसको बोलते हैं ना, अच्छे यूज केसेस भी बहुत नहीं है, मतलब एंटरटेनमेंट और एजुकेशन और मीटिंग. ऐसा नहीं है कि इन तीन, ये तीन के अलावा मैंने कुछ सुना नहीं है अभी तक. और उसमें भी लोग फिर सोचते हैं कि वीआर ही बहुत जरूरी है क्या, मतलब जूम पे काम हो जाता है ना, क्या वीआर वाली मीटिंग जो है वो जूम से बहुत ज्यादा बेहतर होगी? हाँ, तो आप या तो जूम, इतनी सारी आजकल कंपनियां हैं जहां जो चलती है जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड टीम, जहां पे आप दूसरों की शक्ल भी नहीं देखते हो कभी, और लोग काम करना सीख रहे हैं. तो क्या इंसान बिना वीआर के भी उतना प्रोडक्टिव हो सकता है जितना लोग सोचते हैं कि वीआर की जरूरत है? एक ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इंसान की अडेप्टेशन भी तो जबरदस्त है ना. हम हमेशा सिर्फ ये देखते हैं कि असली दुनिया कैसी है, हम उसी को हम सिर्फ रेप्लिकेट करते हैं, पर ऐसा नहीं है. डिजिटल दुनिया कभी कभी अलग तरीके की बनती है. फ्यूचर में, और एंटरटेनमेंट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। हम क्यों, यही क्यों सोचते हैं कि अरे मुझे ताजमहल देखना है, अगर वीआर हो गया मैं घर बैठे बैठे ताजमहल देखूंगा। अरे अगर वीआर हो गया तो ताजमहल छोड़ो ना, मैं कुछ और देखूंगा यार, जो दुनिया में है ही नहीं वो देखूंगा। तो ये वाली जो एक चीज है ना कि हम कभी कभी अंडर एस्टिमेट करते हैं इंसान को भी, और टेक्नोलॉजी से कैसे दुनिया बनने वाली है फ्यूचर में उसको हम थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट भी करते हैं। तो ये तो मीटिंग वाली बात हो गई। अब एजुकेशन में हम ये सीख रहे हैं कि पूरा वीआर करने से एजुकेशन काफी खराब हो जाती है, क्योंकि एजुकेशन आउटकम जितने लोग भी देख रहे हैं बच्चों को, इवन सिंपल आईपैड और ये सब टेक्नोलॉजी लगाने से भी कोई इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। कोई फर्क नहीं है, कितनी टेक्नोलॉजी लोगों ने लगा ली है, अभी कोई प्रूफ नहीं है इतनी स्टडीज के बाद में कि टेक्नोलॉजी और बिना टेक्नोलॉजी के बच्चे कोई ज्यादा इंटेलिजेंट निकलते हैं।
पर ये सौरभ देखिए, एक चीज तो हो ही सकती है ना, जैसे मान लीजिए हमारी हमारी सिचुएशन में देखिए, हमारे स्कूल्स में टीचर इतना खराब पढ़ाते हैं।
ऐसे कि ये क्या है, ऐसे बोल रहे थे हमारे टीचर्स के बारे में?
मतलब इन जनरल मैं इंडिया के बारे में बोल रहा हूँ, मीडियन एवरेज। तो अगर इंडिया के से पब्लिक स्कूल्स में ऐसे सिस्टम्स हो तो बेहतर होगा ना कंपेयर टू अभी जो रियलिटी।
पर वहां पे भी फिर लेकिन टेक्नोलॉजीज भी बहुत तरीके की और बहुत सारे ऑप्शंस है ना। क्या वीआर ही वो टेक्नोलॉजी है जिससे आपको क्या फिजिकल क्लासरूम को ही रेप्लिकेट करने की जरूरत है, या फिर कोई अलग तरह से भी टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती
है? वो बात है, हाँ वो बात
है ना, ये शायद हम पढ़ के जल्दी समझ लेते हैं, किताब भी तो एक टेक्नोलॉजी है।
हाँ, वो भी है।
ये तुमको लगता है क्या विनीत, अब तुम इतने साल से इसमें हो, कि ये जो हमारी शायद ओवरऑल कल्पना ही थी कि क्योंकि वीआर एक हमेशा हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये जो हम सच्चाई है ये हम एक तो हर जगह पहुंचा दें, एक वीआर की ये एक्सपेक्टेशन होती है, है ना, जो भी हमको दिखता है यथार्थ को हम हर जगह पहुंचा दें, हमको वहां हमको जगह के पास जाने की जरूरत नहीं, हम जगह को अपने पास ले आएंगे।
हाँ,
एक तो ये दिखता है, दूसरा ये चीज कि जो भी दिखता है उससे बहुत कुछ हम ज्यादा देख लें, है ना, कि मैं जैसे हेलमेट ही चला रहा हूं तो मुझे सिर्फ यही नहीं दिख रहा है कि सामने से आदमी आ रहा है, मुझे सबकी स्पीड भी दिख रही है, मुझे पता है कि कौन मेरे को हिट कर सकता है, मुझे बहुत कुछ रोबोकॉप टाइप हजार चीजें दिखेंगी, या फिर टर्मिनेटर टाइप, जो भी अगर लोग साइंस फिक्शन मूवीज देखते हैं उसमें सब कुछ दिखता रहता है ना उसको, एकदम अजीब अजीब वो गरीब। लेकिन क्या इंसान वो उतना, एक तो उतनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए रेडी है हम? पता चला वो देखते देखते एक्सीडेंट ही होने वाला है।
तो टू आंसर योर क्वेश्चन, एक तो है कि आफ्टर द एज ऑफ 30-35 मोस्ट ह्यूमंस आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव।
ऐसा ऐसा ये तो दिल को चोट लग गई मेरे।
नहीं, ये सच्चाई बात है कि एक बार एक सर्टेन एज के बाद हमारा जो जो ब्रेन है वो
अधेड़ उम्र के बाद बेसिकली।
तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है कि हम लोग जो बना रहे हैं टेक्नोलॉजी और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उन्हें उन्हें पता भी नहीं है कि तुम कैसे यूज करोगे। जिन्होंने इंटरनेट डेवलप किया था उन्हें पता भी नहीं था कि हम लोग ये करने वाले हैं उसके साथ।
वो तो ठीक बात है। हाँ,
तो उन्होंने इंटरनेट डेवलप किया था टू डू प्रोडक्टिव थिंग्स लाइक ईमेलिंग देयर पीपल फ्रॉम वन नोट टू द अदर, है ना। तो उनको ये, उनको क्या पता था कि हम लोग ये सब करेंगे? तो जो इनोवेशन लेके आते हैं वो यूजुअली बच्चे आते हैं, जो बच्चे उनके पास वो क्या बोलते हैं, तो जील होता है कि यार ये ट्राई करते हैं वो ट्राई करते हैं उनमें। अभी हमारा जो दायित्व है इन द एआर और वीआर स्पेस इज टू जस्ट बिल्ड द टेक्नोलॉजी, है ना। तो हम तो यूज करने वाले नहीं है।
नहीं नहीं, यूज तो हमको दिखता है ना, कि सबसे बड़ा यूज केस क्या है, स्नैपचैट में अपने ऊपर मूंछ लगाने का।
सही बात है। तो ये हम तो करते भी नहीं है ना। हाँ, तो एटलीस्ट मैं तो नहीं करता हूँ।
हाँ, तो लेकिन सबसे बड़ा यूज वही निकल के आया कि भाई आपको आपको बिल्ली बन के चैट करना है।
हाँ,
या वीडियो कॉल करना है जिसमें आप बिल्ली बन के बैठे हुए हैं।
हाँ, हाँ, और अब तो तुम टिकटॉक में देखे हो तो उसमें उससे ज्यादा ही है एआर। तो इट टेक्स एआर टू अ डिफरेंट लेवल। अभी मैं देख रहा था एक नए फिल्टर्स आए हुए हैं टिकटॉक में जिसमें तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इट विल शो यू डिफरेंट एक्सरसाइज पोजेस एंड यू हैव टू डू दोस पोजेस, और स्नैपचैट बोलता है यस। तो ये अभी एक्सरसाइज भी होने लग गया है एआर में।
Okay.
है ना, तो इट्स टेक्निकली नॉट द फाइनल क्या बोलते द माउंट एवरेस्ट ऑफ एआर, बट इट इज ऑगमेंटेड रियलिटी वेयर इट इज डिटेक्टिंग व्हाट यू आर डूइंग, इट इज पुटिंग यू इन अ फ्रेम एंड इट इज टेलिंग यू ठीक है ओके गुड, है ना। तो
ये पुशअप तूने अच्छा लगाया।
हाँ, और हाँ, और ये जो है जो पुशअप वाला जो तो तुम बोल रहे हो, एक्चुअली हम बना रहे हैं एक प्रोडक्ट बेस्ड ऑन पोज एस्टिमेशन। है ना, तो हमें पता भी नहीं कि कैसे यूज करेंगे, हम यूज तो करेंगे ही नहीं, मैं तो यूज करूंगा ही नहीं यार, है ना। तो हमारा जो जो गोल है कि इस टेक्नोलॉजी को हम इतना बना लें कि जिसको यूज करना है वो फाइंड आउट करेगा क्या यूज करना है, एंड उसके ऊपर हम कैपिटलाइज करेंगे। तो इसको जो हम देखेंगे तो राइट नाउ वही है, कम बैक टू द ओरिजिनल थिंग की एंटरटेनमेंट अभी फॉर यू नो 35 पीपल एंड अबव, एंटरटेनमेंट इज क्या 80% ऑफ योर लाइफ, प्रोडक्टिविटी इज जस्ट अ वे ऑफ गेटिंग एंटरटेन्ड। ठीक है, तो तुम देखो, तुम अब देख लो कि लाइक नेटफ्लिक्स ज्यादा हो रहा है, यू नो यूट्यूब इज ग्रोइंग, एवरी ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑप्शंस आर इंक्रीजिंग मोर एंड मोर। ठीक है,
और वो होना भी वाला है, मेरे को लगता है ओवरऑल कि जैसे जैसे, और वो मेरे को लगता है एकदम नेचुरल है कि अगर हमारी जैसे जरूरतें पूरी हो जाए तो इंसान क्या करेगा, अपने आप को एंटरटेन नहीं करेगा ना, फिर उसके बाद
एंटरटेन नहीं करेगा।
एंटरटेनमेंट इकोनॉमी जो है फाइनली 80% होनी चाहिए दुनिया की।
और जैसे तुम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हो तो एज तुम जितना AI और ऑटोमेशन लेके आ रहे हो उतना ही तुम्हारा फ्री टाइम हो जाता है, और तुम इस फ्री टाइम में क्या करोगे, एंटरटेनमेंट है ना। एंटरटेनमेंट, देयर इज नथिंग मोर एंटरटेनिंग देन VR, नथिंग मोर एंटरटेनिंग इन ट्रू VR। ठीक है, तो वो है कि जैसे वी प्रोग्रेस विद इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, अब तो हम यार घर बैठे बैठे हम लोग पूरा क्या बोलते हैं उसका ईमेल कर लेते हैं पूरा, अब तो यू नो रिमोट काम कर लेते हैं, तो इतना प्रोडक्टिविटी इतना इंक्रीज हो गया कि यू डोंट हैव टू ड्राइव टू अ ऑफिस। ठीक है, उसमें ही तुम्हारा 4 घंटे वैसे ही बच गए, क्या करोगे तुम 4 घंटे में, नेटफ्लिक्स देखोगे, हाँ बस और क्या देखोगे। तो इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स तुम्हारा प्रोडक्टिविटी थैंक्स टू टेक्नोलॉजी इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हारा मोस्ट ऑफ योर टाइम विल बी स्पेंट इन एंटरटेनमेंट। और तब अगर VR आ गया, एंड VR इज द बेस्ट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट यू कैन गेट, एंड दैट बेस्ट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट इज कंट्रोल्ड बाय फेसबुक, तो वहां पे वो जो डायलेमे आ जाते हैं कि क्या होगा कैसे कंट्रोल होगा उसको, और
वो सारा उन्हीं के हाथ में चला जाए। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि गेमिंग ऑलरेडी शायद हॉलीवुड से बड़ा हो गया GDP, उनका रेवेन्यूज, गेमिंग रेवेन्यू इज बिगर देन। तेरे को पता है प्रणय, हम हिंदुस्तान में इतना नहीं देखते, गेम्स जो है वो एक महीने पहले महीने के लॉन्च में $1 billion कमा लेते हैं।
बिल्कुल नहीं, मैं तो 8-bit गेम्स खेलने वाला हूँ, उसके बाद खेलेंगे।
हिंदुस्तान में उतना बड़ा नहीं है क्योंकि गेमिंग अभी, लेकिन गेमिंग पूरी दुनिया में जो है, मतलब हॉलीवुड एक हम हिंदुस्तान में कि बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, और सोचो ये एक नई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आई है जो हॉलीवुड पीछे छोड़ दिया उसने ऑलरेडी।
हाँ, पर सौरभ आप और विनीत आप दोनों सिर्फ एंटरटेनमेंट के बारे में क्यों बोल रहे हैं, जैसे मैंने ये सुना है
क्योंकि बाकी सारे फुस हो गई है। अच्छा। तुमने अगर कभी वो जैसे VR वगैरह ना, पहली बार ये न्यूरोमैंसर नाम की नॉवल आई थी जिसमें साइबर वर्ल्ड और ये सब चीज वर्ल्ड पहली बार यूज हुए थे, तो उस वो आप नॉवल पढ़ोगे ना तो उसमें तो वो VR ऐसे यूज करता है कि वो हमारे काम करने का तरीका होगा, और जैसा विनीत ने बोला ना, हम जो सोचते हैं उससे टेक्नोलॉजी बड़ी अलग होगी, तो ये एक अच्छा तरीका देखने का। ये 1980 का नॉवल है और उसमें वो ऐसा होता है, एक हैकर होता है, वो VR में जाकर के हैकिंग करता है अपने हाथ पैर हिला डुला के। ठीक है, फिजिकल आज की डेट में कोई भी बोलेगा क्या बेवकूफ है क्या, मैं टाइप करूंगा टर्मिनल में। ठीक है, तो वो उस जमाने में भी टाइप ही करता था आदमी, और कुछ चीजें अभी भी टाइप करने को ही ज्यादा अच्छी है। है ना, ऐसा नहीं है कि उनको आप फिजिकल रूप दे के उनसे आप कुछ ज्यादा अच्छा कर लोगे। हम डिजिटल वर्ल्ड में अलग तरह से इंटरेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए। तो हम जितना भी सोच ले कि हमको चीज को हिलाना है, स्वाइप करना है, अक्सर टाइप करना जो है वो सबसे प्रोडक्टिव तरीका है। तो वो अभी भी हम वैसा ही टाइप ही करते हैं। तो वो VR की जो कल्पना थी वो नहीं रही है। VR की जो और विनीत ने ठीक बोला, हमको बच्चों को देखना चाहिए, जो यंगस्टर्स है ना वो जो कर रहे हैं वो इंडिकेशन है कि ये चीज का यूज क्या है।
यूज केस तो हम कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते।
यंगस्टर्स इसको क्या एजुकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, क्या मीटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, नहीं ना टाइम पास के लिए कर रहे हैं ना,
वो है नहीं। पर जैसे विनीत ने अच्छी बात बताई कि वो प्रोडक्टिविटी फ्रंटियर के हम कितने पास हैं, उससे वो डिटरमिन करता है कि हम लोग क्या उपयोग करेंगे बचे हुए समय का। तो मैं जैसे सोच रहा था कि जैसे लोगों को ये एरिक्सन भी यूज कर रहा था शायद अपने नेटवर्क्स को रिपेयर करने के लिए, तो जैसे कई बार टेक्नीशियंस आते हैं और टेक्नीशियंस किसी सिस्टम को रिपेयर करना चाहते हैं, तो अगर उनको उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी तो काफी टाइम वेस्ट होता है, दूसरे लोगों को लेके आना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो अगर वो आप मानिए आप एक सिस्टम को देख रहे हैं, हैं और ऑगमेंटेड रियलिटी से आप उसके अंदर की वायरिंग वगैरह सब आपको सुपर ले इम्पोज हो जाए वो सिस्टम के ऊपर, तो शायद वो ढंग से फिक्स कर देगा। अगर उन्हें इतनी जानकारी नहीं होगी फिर भी वो फिक्स कर सकते हैं। तो अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी फ्रंटियर इतना आगे पहुंच जाए कि आप और मैं जैसे लोग जो उस सिस्टम के बारे में ज्यादा नहीं जानते वह भी फिक्स करना चाहते हो, अगर दुनिया उस तरफ चली जाए तो वीआर एआर का काफी फायदा हो जाएगा ना।
हाँ, और एक और फायदा यह है कि स्पेशली वीआर में कि जो जॉब्स है जो इनफ्रीक्वेंट है जैसे कि फायर फाइटिंग, पुलिस वर्क, आर्मी, ये ऐसे ट्रेनिंग के लिए जो यू नो यू कैनॉट रियली सिमुलेट द एक्सपीरियंस लाइक टू सिमुलेट अ फायर वेयर यू हैव टू गो एंड सेव समबडी, उसमें बहुत पैसा जाता है वो एक सिमुलेशन करने में। और बेसिकली जो इन द 1990s 1980s
या जैसे या इवन हवाई हवाई जहाज उड़ाने का भी वो तो बहुत बहुत पहले से यूज हो रहा है।
करेक्ट, फ्लाइट सिमुलेटर। ऐसे ऐसे जॉब्स में इट हेल्प्स अ लॉट क्योंकि यू कैन डू मेनी मोर रेपिटेशंस। पहले जो फायर फाइटर्स होते थे उनका लाइक 6 months में एक बार होता था ट्रेनिंग क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है एक पूरा फायर ड्रिल करने के लिए। तो तुम 6 months में एक बार एक बंदे को तुम ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, और फिर जब रियल फायर होता है बंदा यू नो इज लाइक आई डोंट नो व्हाट द हेल टू डू, राइट? तो ऐसे सिनेरियोस में ट्रेनिंग के लिए वीआर बहुत बहुत यूजफुल होता है, बट इट्स अ वेरी स्मॉल यूज केस ऑफ जो जनरल डायरेक्शन जा रहा है।
ओवरऑल साइज कम है इस चीज का। तो प्रणय अगर तुम देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये वाला बैठ लिया है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो हॉलोलेंस है वो टोटली एंटरप्राइज फोकस्ड है। तो अगर तुमको गूगल ग्लासेस याद हो, गूगल ने लॉन्च किए थे और वो इंडिविजुअल्स के लिए थे। हाँ। तो उसमें इनफैक्ट प्राइवेसी कंसर्न भी आया कि आप पूरा टाइम ग्लास लेके घूम रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, तो भैया आप लोगों से बिना पूछे परमानेंटली चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो, तो लोग आपत्ति भी करते थे।
हाँ।
कि भैया तुम क्या कर रहे हो। हाँ। तो एक ये तो एक ये प्रॉब्लम था ही इन जनरल, और दूसरा ये भी था कि कोई ऐसे घूमेगा क्या पूरा टाइम। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कम्प्लीटली एंटरप्राइज अप्रोच लिया है और वो इसी टाइप की चीजें जैसे तुमने बोली ना, जो कि टेक्नीशियन आकर के उसको यूज कर ले कि उसको दिख जाए कि ये वायर कैसी है ये कैसी है, इस चीज के लिए वो बेच रहे हैं ऑलरेडी।
ओके।
या एजुकेशन के लिए, जैसे मान लो तुमको डाइसेक्शन करना है हर किसी को, तो भैया हम जब स्कूल में थे तो सबको वो लैब रैट्स मिलते थे। अभी तो मैंने सुना है स्कूल में डालते भी नहीं है लैब रैट्स क्योंकि महंगा, इतने कितने स्कूलों में ये सब सप्लाई करोगे और सब कुछ करोगे। तो तुम डिजिटल लैब रैट को डाइसेक्ट कर सकते हो एआर और वीआर यूज करके। ये सारे यूज केसेस हैं लेकिन साइज में बहुत छोटे हैं। मतलब माइक्रोसॉफ्ट का हॉलोलेंस बिजनेस जितना उन्होंने सोचा था उससे बहुत छोटा है अभी भी। तो खासकर एयरलाइंस, एरोस्पेस इंडस्ट्री वगैरह में, मान लो तुमको पूरा प्लेन चाहिए उसका रिपेयर सीखने के लिए। अब वो प्लेन मुहैया कराना तो हमेशा महंगा है ना। लेकिन तुम वर्चुअल रियलिटी में वो प्लेन का रिपेयर सीख लो तो प्लेन टेक्नीशियन के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। तो ट्रेनिंग के लिए तो इन सब जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि जीरो है, मतलब ये सब जगह ये अब ऑलरेडी सच्चाई है, ये ऑलरेडी हो रहा है। पर ये सब अभी एक तो उतना अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं है मैंने जितना हॉलोलेंस यूज किया है। मतलब एक तो एकदम पता चलता है कि बुद्धू बना ही रहा है और इतना मजा भी नहीं आता है।
मजा तो नहीं आता उसमें एक्चुअली। सौरभ, मुझे लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा बेट है माइनक्राफ्ट। तो
इंटरेस्टिंग, वो उनका वीआर बेट है।
उनका वीआर एआर बेट माइनक्राफ्ट प्लस एक्सबॉक्स है। तो
ये क्या है थोड़ा बताइए, माइनक्राफ्ट क्या वो गेम या क्या है?
हाँ,
थोड़ा बताइए।
तो माइनक्राफ्ट इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेयर गेम in the world right now and it has been for quite a while.
Okay.
Microsoft ने acquire किया actually प्रणय, Minecraft उनका नहीं है, उन्होंने खरीदा basically.
Okay.
हाँ, खरीदा था। I think $2 billion देके कुछ खरीदा है उन्होंने from a single developer जिसने start किया था इसको।
Okay.
और तो उनका if you look at it the most the only multiplayer, तो the idea of VR is कि it's a fully virtual world. तुम कुछ भी बना सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, और उसका स्ट्रेट अप डिस्क्रिप्शन है माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट में तुम कुछ भी कर सकते हो, इट्स अ मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम। तुम कहीं भी जा सकते हो, यू कैन क्रिएट योर ओन यूनिवर्स, यू कैन क्रिएट योर ओन काइंड्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की डिफरेंट, और लोग करते हैं। देयर आर पीपल दैट स्पेंड।
ये अच्छा तुमने एग्जांपल पकड़ा विनीत, ये एक और दूसरे तरीके का वीआर हो गया प्रणय, जिसमें हम इमर्स नहीं है लेकिन दुनिया पूरी नकली है और काल्पनिक है। जरूरी नहीं है कि आप पूरा एक स्क्रीन लगा के देखें। माइनक्राफ्ट लोग अक्सर अपने पीसी पे ही खेलते हैं।
हाँ, पीसी पे खेलते हैं। हाँ।
या एक्सबॉक्स,
पर अभी
है ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको स्क्रीन में लगाते हैं। लेकिन दुनिया पूरी की पूरी वर्चुअल है, लेकिन कल को यही दुनिया स्क्रीन आपके आपके कैमरे में अभी घुस सकती है, आपके आंख में रादर। तो इसका एक बड़ा पहले एडल्ट लोगों का, ये तो बच्चे लोग खेलते ना, एक सेकंड लाइफ नाम का भी बहुत पॉपुलर मल्टीप्लेयर ऑनलाइन था, बहुत पुराना, 10-12 साल पहले था, लोगों को लगता था पूरी दुनिया बदल जाएगी, एक कंट्री वगैरह ने उसमें अपनी एम्बेसी भी खोल दी थी, लेकिन एक कुछ लाख लोगों के यूजर पे आके अटक गया था, है ना? तुमको क्या लगता है विनीत, वो क्यों अटक गया था सेकंड लाइफ?
आई थिंक सेकंड लाइफ का वही प्रॉब्लम है ना कि उनके पास स्केल नहीं था, तो दे ट्राई टू मेक इट टू रियलिस्टिक। तो माइनक्राफ्ट को देखे हो, माइनक्राफ्ट इज वेरी गेमी।
हाँ, ये है। तो माइनक्राफ्ट में मतलब ऐसे ब्लॉक्स तो माइनक्राफ्ट में ना, प्रणय अगर तुमने कभी देखा नहीं है, उसमें बेसिकली खासकर उसको टीनेजर्स बहुत खेलते थे और इवन बच्चे भी, कि उसमें चीजें बना सकते।
एंड टुडे इट्स वेरी 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 पॉपुलर अमंगस्ट किड्स, वेरी वेरी पॉपुलर।
तो तुम एकदम एक्चुअली ऐसा सोचो कि लेगो का तुमने वर्चुअल दुनिया बना रहे हो, एक्चुअली दैट इज मोर एक्यूरेट थिंग टू से।
तो मैं अभी देख रहा हूं द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड राइट नाउ इज माइनक्राफ्ट।
ओके, वाओ।
हां, तो आई थिंक दे हैव क्लोज टू अबाउट 400 मिलियन प्लेयर्स।
वाओ, 40 करोड़।
ठीक है, हां 40 करोड़। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज दैट schools.
Achha.
Right. So it is actually, there is this thing called Minecraft education, and it is very, very, very popular in schools in the US.
Achha.
Like, because it combines programming, which is a big concept in for teachers right now, combines programming, it combines games, it combines all of these things. So Microsoft ne bahut bada bet lagaya hai Minecraft. Right. Kyunki Xbox to unka already top gaming console. I think it's the second largest gaming console after PS.
Right.
ठीक है, तो सडनली अभी तुम दोनों को कंबाइन कर लो कि तुम एक्सबॉक्स जो गेमिंग है उसको तो माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के साथ कंबाइन करो,
और कल को कोई आपके पास अब एक कॉन्टैक्ट लेंस या ग्लासेस आ जाए तो बेसिकली कंबाइन हो जाएगा सब।
हाँ, फिर तो लोग तो रहने लग जाएंगे,
वो लोग उसमें से निकल के ही नहीं आने वाले हैं फिर।
हाँ, तो वो बहुत बड़ा बैट है माइक्रोसॉफ्ट का, जो लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के पास अभी तक वीआर प्रोडक्ट नहीं है। अभी तो जो सौरभ ने बताया था, जो एमआर प्रोडक्ट है उनका हॉलोलेंस, बहुत ही गंदा प्रोडक्ट है, बहुत ही एकदम घटिया सा उनका एक्सपीरियंस है,
तो नहीं आता है। उसको बेसिकली कोई किसी एम्प्लॉय को बोला जाएगा यूज करो, तो उसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दफ्तर ने दिया तो क्या करें।
बहुत उसका एक्सपीरियंस बहुत गंदा है,
खुद से तो कोई नहीं लेगा।
पर तो ये तो हुई माइक्रोसॉफ्ट की बात, और गूगल का जो आपने गूगल ग्लासेस बोला, तो उसका क्या स्टोरी हुआ? उनकी भी थोड़ी दुखी कहानी है,
बहुत दुखी कहानी है। और हमारा बहुत अच्छा, यू नो, वी आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू गूगल। तो हम जब आई थिंक बैक इन 2013 तो हमारा जो कंपनी था, वी आर द फर्स्ट एशियन कंपनी टू गेट गूगल ग्लास फ्रॉम गूगल।
ओके,
ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि भाई तुम अच्छा ये कर रहे हो पैनोरमास, यू नो, तो कुछ कर सकते हो कि नहीं। तो उन्होंने भेजा था हमें ये गूगल ग्लास प्रोडक्ट कि तुम कुछ करो। तो हमने बहुत उसको बहुत कैसे ये होगा ये, you know, we went to, कैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में हमने जाके बोला था ये दिस इज द फ्यूचर, ऐसे लोग जाएंगे, ऐसे फोटोज लेंगे, पर कुछ हुआ नहीं उसका, क्योंकि पता नहीं क्या यार, एक तो यूज केस नहीं था उसका उतना। एक्चुअली मुझे तो लग रहा था कि पीओवी टाइप यूज केस होगा, जैसे कि प्रणय बता रहे थे कि इन इंडस्ट्रियल places where you want to like fix stuff because you can see exactly what the person is saying, hai na? So usko tum microphone ke sath tum connect kar lo, to you can do like remote fixing of things and all that stuff. To tabhi 2-3 saal mein to wo to hua nahi, fir wo pura crash ho gaya, par abhi unka enterprise products are coming out, lag raha hai thoda sa, kya bolte hai,
acha abhi Google ne give up nahi kiya, laga hua
hai, ha laga hua hai, abhi to unka pura Google Glass pura enterprise pe hai,
nahi aa raha hai, okay,
haan.
enterprise, kyunki us samay bhi logon ne Pranay bola tha ki enterprise use cases zyada hai, par enterprise use case mere khayal se rahenge, lekin hum ek cheez bhul jate hain Pranay, mere ko lagta hai ki technology jaise badh rahi hai to hum ye maan ke chalte hain ki yaar technology itni badhiya hone wali hai ki VR itna fundu ho jayega, aur baki sari technology ghas chal rahi hogi kya, ki automatic healing nahi hogi, क्या अपने आप ही मशीन अपने आप को शायद फिक्स नहीं कर लेगी, क्या छोटे छोटे रोबोट नहीं आ जाएंगे जो फिक्स, तो ये वीआर से ही एक टेक्नीशियन रहेगा क्या? इतने सारे जो यूज केस हैं ये ट्रेनिंग और टेक्नीशियन वाले, ये बाकी टेक्नोलॉजी उनको खा रही है,
खा जाएगी
उन सारे यूज केस को।
अब तो
और वो इतना ज्यादा खा जाएगी कि वो वीआर का फिर आप बोलोगे ये क्या बचा, ये 10 टेक्नीशियन जो बचे ये वीआर यूज करेंगे।
हाँ, सही बात है। तो फिर हम लोग घूम फिर के उसी बात पर है कि शायद एंटरटेनमेंट और एजुकेशन काफी बड़ी चीजें रहेंगी उस दुनिया में।
एंटरटेनमेंट एजुकेशन रहेंगी, और एजुकेशन में मेरे को थोड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कितनी रहेगी। एक टाइम पे आके लोग शायद बोलेंगे कि भैया इसको रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है।
हाँ, तो सौरभ, आई एग्री विद यू कि तो हमारा एक और प्रोडक्ट है क्लास XR करके, जो यूनिसेफ ने फंड किया है, जो हम विच इज बेसिकली एन ओपन सोर्स प्रोडक्ट फॉर एजुकेशन इन VR, ठीक है, तो वेब VR के टेक्नोलॉजी स्टैक पे ही है। और हमें भी ऐसे लगता है कि ओके, हम जैसे कि आर एज ग्रुप, वी डोंट सी VR एज सच अ ग्रेट एंड इंटरेस्टिंग टूल फॉर एजुकेशन, पर जो बच्चे हैं दे ग्रो अप विद iPads एंड फोन्स, तो उनका जो स्टिम्युलस है कि क्या उनको स्टिम्युलेट करता है टू लर्न, दैट इज एट अ वेरी डिफरेंट लेवल, ठीक है। तो उनको तुम बुक पढ़ा दोगे ना तो इतना बोर हो जाता है कि क्या है ये बुक, समझ रहे हो? तो उनका जो स्टिम्युलस लेवल इतना बढ़ गया है कि तुम उनको बुक्स के साथ नहीं टीच कर सकते। अभी मोस्ट स्कूल्स उनका जो पेडागॉजी है वो हो गया अभी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, है ना। अभी प्रणय तुम्हें भी पता है कि हम लोग जब स्कूल में थे तो हमारा वो जो सीडी रॉम लेके आती थी मैम बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़, तो हम इतना एक्साइटेड होते हैं उसके लिए,
करेक्ट,
कि यार बुक से निकल के थोड़ा यार टीवी देख लेते हैं, है ना। हमें नेशनल ज्योग्राफिक के सीडीज, पता नहीं ये मेमोरी मेरा ट्रू है कि नहीं, कि हम नेशनल ज्योग्राफिक भी देखते थे ना स्कूल में, दिखाते थे हमें स्कूल
डिस्कवरी,
हाँ डिस्कवरी, हाँ तो पता नहीं कि हम ज्यादा पढ़ते थे कि हमारा नॉलेज ज्यादा इंप्रूव है कि नहीं, पर देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद स्टिम्युलेशन एंड लर्निंग, ठीक है। तो तुम जितना एक बंदे को
एक्साइटमेंट बढ़ता है,
हाँ,
लेकिन मेरी मेरे को ये चीज लेकिन प्रूवन नहीं है कि शायद एक्साइटमेंट बढ़ता है उससे लर्निंग आउटकम बढ़ता है क्या, तो अभी ये कोई प्रूवन चीज नहीं है। पता चला एक्साइटमेंट ज्यादा हो रहा है और लर्निंग आउटकम वहीं का वहीं है।
हाँ, तो ठीक है ना, तो इट्स बेटर देन लर्निंग आउटकम गोइंग डाउन। द आइडिया इज
वो डाउन नहीं, डाउन वाउन कोई नहीं जाता, बच्चे लोग ठीक है, अमीर लोगों को लगता है हमारे बच्चे खुश है और कुछ नहीं है।
नहीं, पर ये प्रूवन है कि लर्निंग आउटकम्स आर गोइंग बिलो एंड बिलो इफ किड्स आर नॉट अटेंटिव इन क्लास।
अच्छा, ये
ठीक है, द किड्स आर नॉट एक्साइटेड टू गो इन क्लास।
अच्छा, ये है।
तो ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, देयर गोल इज नॉट टू मेक यू अ सुपर ह्यूमन। ये नहीं कि तुम VR में पढ़ा दोगे तो बच्चा यू नो IIT चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पर ये है कि एटलीस्ट वो क्लास में थोड़ा अटेंटिव तो रहेगा, है ना, थोड़ा।
हाँ, तो फिर तो वहां पे भी इसका वैल्यू एंटरटेनमेंट वाला ही है बेसिकली। हाँ, कि मतलब वो मदारी का बंदर टाइप्स, राइट, बंदर नाच रहा है तो मदारी के ऊपर आपका अटेंशन है।
यस, यही है कि ना, कि ये एक चीज मैं सीख गया हूँ कि हम लोग एंटरटेनमेंट को बहुत डीवैल्यू करते हैं।
हाँ,
पर हमारा जो तुम ले लो ना, तुम हमारा बचपन से अभी तक तुम ले लो, वी स्पेंड 80-90% ऑफ आवर टाइम गेटिंग एंटरटेन। ये तो लाइफ बहुत बोरिंग है भाई,
और एंटरटेनमेंट चाहिए। ऐसा क्यों है कि मतलब
एंटरटेनमेंट चाहिए? एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स क्या है? स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है, ठीक है। टीवी एंटरटेनमेंट, जो गॉसिप करते हैं वो भी एंटरटेनमेंट है, पुलियाबाजी करते हैं वो भी एंटरटेनमेंट है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, और ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स आर मच, यू नो, दे आर 10x इन VR, बिकॉज यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। तुम कल तुम बास्केटबॉल खेलना चाहते हो, कल लेब्रॉन जेम्स के साथ, तुम बस लेब्रॉन जेम्स का अवतार ले लो, उसके सारे हैं, बस खेलो उसके साथ,
बस पसीना नहीं आएगा,
पसीना आएगा भाई। तुमने VR में गेम्स खेले हैं, बहुत पसीना आता है
VR में। हाँ, नहीं मतलब अगर क्लिक एक्सबॉक्स नहीं यूज कर रहे हो तो बिल्कुल, हाँ तब तो पसीना आएगा।
हाँ,
बॉक्सिंग खेला है मैंने, बॉक्सिंग खेला है मैंने, बॉक्सिंग करो तो पसीना आता है,
बहुत आता है। और वो VR का वो भी है कि हेल्थ में इट्स एक्चुअली क्वाइट यूजफुल, बिकॉज तुम अभी जो देखोगे हमारा जो सिडेंटरी लाइफ हो गया, क्यों कंप्यूटर के साथ सामने बैठते हैं, बस पूरा देना है ना, तो VR में वो थोड़ा सा हिलना डिलना हो जाता है। और वही मैं बोल रहा था कि AR के जो फिल्टर्स आए हुए TikTok में, दे आर स्पेसिफिकली टारगेटेड टू गेट पीपल आउट इनटू डू थिंग्स। तो TikTok ने अभी ये किया हुआ है कि आफ्टर आई थिंक लाइक 20-25 मिनट्स ऑफ यू स्वाइपिंग एंड स्पेंडिंग टाइम ऑन TikTok, दे विल शो यू दीज वीडियोज ऑफ फेमस TikTokers टेलिंग यू टू गो आउट।
ओके, कि उठो भाई, हिलो थोड़ा,
है ना। हाँ, थोड़ा हिलो, है ना। अब मुझे लगता है कि उसके ऊपर वो डालेंगे ये क्या बोलते हैं, टेक अ ब्रेक, डू दीज एक्सरसाइजेस, है ना। तो इतना हम एनग्रोस हो गए एंटरटेनमेंट के कि ऑल योर डेली एक्टिविटीज आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज। तो समझ लो, तो वो हो जाएगा, वो फ्यूचर वैसा आने वाला है।
तो ये एक इसमें एक सवाल जो मैं थोड़ा फॉलो नहीं कर रहा हूँ कि यूजली पूरा एक वीआर का हेडसेट जो लगाने से कि पूरा चश्मे में आप वो हो रहा हो, तो काफी बार थोड़े यूज करने के बाद में लोगों को चक्कर आने लगता था।
हाँ,
क्योंकि आपकी हाँ, जो दुनिया वीआर के अंदर की है और जो आपका कान के अंदर का फ्लूइड है उसके उसका मैचिंग नहीं होता है अक्सर।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
तो आपको आपको फिर चक्कर आता है क्योंकि भाई वो जैसा सेम चक्कर है जो कि अगर आप किसी बस के पीछे बैठे हो तो आपको चक्कर आने लगता है क्योंकि आपको दिख नहीं रहा बस कहाँ जा रही है लेकिन आपका दिमाग तो हिल रहा है ऊपर नीचे।
हाँ,
है ना, तो चक्कर आ जाता है। तो वैसे ही वीआर की दुनिया में चक्कर आता था, तो वो चक्कर का चक्कर खत्म हो गया क्या?
नहीं नहीं, वो तो अभी भी है।
ये कब ठीक होने वाला है?
ये तो वही है कि जो नॉजिया जो होता है मोशन सिकनेस, तो दे आर रिलेटेड टू योर क्या बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ योर आई, व्हाट योर आई कैन सी एंड व्हाट योर बॉडी कैन फील आर टू डिफरेंट थिंग्स। यू फील मोशन सिकनेस, तो वही अभी तक हार्डवेयर अभी तक आया नहीं है वहां पे।
अच्छा,
पर जब आएगा तब तो बहुत चेंज होने वाला है।
तो ये बेसिकली कुछ सब कुछ चीजें बेसिकली वेट कर रही हैं हार्डवेयर टू कैच अप विद हमारी जो इमेजिनेशन है। मतलब तुम जैसे लोग वेट कर रहे, साला मेरे पास सॉफ्टवेयर सब है लेकिन हार्डवेयर मेरा साथ नहीं दे रहा।
हार्डवेयर नहीं, हाँ सॉफ्टवेयर सब कुछ है।
मैं इस सवाल पर थोड़ा और समझना चाहूंगा।
ये प्रणय तुम्हारे प्रोफेशन पुराने प्रोफेशन के ऊपर में
एग्जैक्टली
उंगली उठ रही है,
इसीलिए मैं थोड़ा उत्तेजित हो गया हूँ और मैं इस पर सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसे क्यों है। जैसे एआई की बात कर रहे थे हम लोग, एआई के लिए आई मीन मूर्स लॉ इज स्टिल होल्डिंग अप, थोड़ा वो 1.5x हो गया है वगैरह, बट ऐसा क्या प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है विनीत जो अभी हार्डवेयर नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है? क्योंकि एआई की दुनिया में तो हार्डवेयर इज क्लोजली फॉलोइंग दिस ना, एआई की रिक्वायरमेंट्स।
नहीं तो वही जो आई थिंक ये जो हमने बात किया था व्हाट्सएप में जब शुरू कर रहे थे, तो आई हैव वांटेड टू एक्सप्लेन हाउ एआई इज नॉट रियली अ टेक्नोलॉजी ट्रेंड। ठीक है, तो एआई इज अ वे ऑफ कंपाउंडिंग अ टेक्नोलॉजी ट्रेंड। तुम अगर कोई ट्रेंड हो रहा है तुम उसमें एआई डालोगे तो उसको तुम 10x कर सकते हो। ठीक है, तो पर वो ट्रेंड इटसेल्फ नहीं है। तो तुम जितना भी एआई यूज कर लो, तुम्हारा चिप अगर इतना प्रोसेसिंग पावर करता है तो इतना ही करेगा, थोड़ा सा एक्स हो जाएगा, है ना। तो इन विजुअल कंप्यूटिंग, विजुअल कंप्यूटिंग इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, विजुअल कंप्यूटिंग वन इज इट वर्क्स ऑन जीपीयूज, राइट? तो मोस्ट ऑफ विजुअल कंप्यूटिंग वर्क्स ऑन जीपीयूज। जीपीयूज स्टिल हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद एनर्जी। ठीक है, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ हीटिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है,
मैं भी यही चीज कहने वाला था प्रणय। तो इसमें ना क्योंकि काफी सारे एआई के यूज केस तुम देखोगे तो तुम क्लाउड पे कर लो प्रोसेसिंग और दिखा इधर दो, लेकिन अक्सर वीआर में तो उसे लेटेंसी आती है।
हाँ,
है ना, कि जो एक थोड़ा सा जो समय की गति जो है, हमको एकदम जो चीज है वो उसी समय दिखनी चाहिए ना।
हाँ,
तो आपको चाहिए कि कंप्यूटिंग वहीं हो रही हो या फिर स्पीड्स बहुत तेज हो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। शायद ऐसा कर सकते हो कि क्लाउड पे सारी प्रोसेसिंग होगी लेकिन स्पीड इतनी तेज हो गई है डेटा प्रोसेसिंग की कि आपको पता ही नहीं चल रहा, पलक झपकते ही हो गया। लेकिन अब स्पीड की तो लिमिट है, लाइट से तेज तो कुछ नहीं कर सकते। है ना, तो लाइट की स्पीड एक आपका बेसिक लिमिटेशन है। तो यानी कि क्लाउड आपका मतलब आपके घर के बगल में तो कोई नहीं बनाएगा ना, है ना। तो दूसरा हो गया, और आपके पास बहुत पास कुछ लगाना है तो वो गर्म नहीं हो सकता ज्यादा, वरना आपका सर गर्म हो जाएगा ना, या आपकी आंखें गर्म हो जाएंगी। अगर आपकी बहुत सारी प्रोसेसिंग पावर आपके सर पे रख दी है या आपकी आंखों पे रख दी है तो कैसे चलेगा? तो ये एक काफी बड़ा गैप है कि कंप्यूटिंग में बड़ा सारा मूर्स लॉ पे बड़ा काम हो रहा है लेकिन वो एट द कॉस्ट ऑफ मतलब लो एनर्जी में नहीं है, उसका एनर्जी कंजम्पशन काफी हाई है।
अच्छा, पर विनिंग एआई के लिए भी जीपीयूज ही यूज हो रहे हैं, तो क्यों जीपीयूज में थोड़ा एडवांसमेंट हो रहा है? आपको लगता है भविष्य में एटलीस्ट जीपीयूज इतने बेहतर हो पाएंगे कि विजुअल कंप्यूटिंग के रिक्वायरमेंट तक भी पहुंच जाए?
हाँ, हो सकता है, पर जो जैसे कि सौरभ ने बोला, वन इज द लेटेंसी पार्ट व्हिच इज की यू नो हाउ लॉन्ग द डेटा टेक्स टू कम टू योर visual senses to create that scenario. एक तो वो problem है, तो 5G may be helpful. ठीक है, दूसरा part ये कि जो हमारा जो अभी तक to run the kind of screens, right? So let's assume that we are still at the screen stage, कि अभी तक contact lenses तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो वो उसको ले लेते हैं, और the other option ये है कि chip तुम डाल दो दिमाग में। ठीक है, which is actually not a unviable solution. Actually, it's probably one of the most viable solutions of what is possible is putting a chip into your head. ठीक है, इट्स प्रोबब्ली द मोस्ट वायबल इन टर्म्स ऑफ रीचिंग द स्टेज दैट यू वांट टू रीच इट.
मैं बस इसमें एक चीज ये भी बताऊं ना, सर में चिप डालने की जगह हम आपका ब्रेन ही नहीं यूज कर सकते कंप्यूटेशन के लिए.
द पॉइंट इज ऑफ पॉइंट ऑफ पुटिंग द चिप की कंप्यूटेशन की यूज केस नहीं है, बट इट्स मोस्टली यू टेक आउट. सो जो होता है हमारा जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है, तो द रिसेप्टर इन आर बॉडी दैट टेक्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज द आई. ठीक है, तो ये आई से लेके तुम जाते हो ब्रेन तक, हाइपोथैलेमस तक. ठीक है, तो वहां पे प्रोसेसिंग होता है. तो द आइडिया ऑफ पुटिंग अ चिप की द चिप डायरेक्टली टेक्स इन्फॉर्मेशन पुट्स इनटू योर ब्रेन, आई की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, तो है ना, तो ये अभी आई तुमने निकाली दिया है, तो तुम जो ब्रेन को बोलोगे तो ब्रेन वही, तो फिर जो आई प्रोसेस करता है, क्योंकि आई में तो
बेसिकली मैं ब्रेन को बोल रहा हूँ कि तुम्हें कोई छू रहा है, तो मान लेगा तुम्हें कोई छू रहा है,
बस खत्म
ऐसे.
तो इट्स हाँ, तो बस वो दैट इज द मोस्ट वायबल ऑफ ऑल सॉल्यूशंस. ठीक है, पर उसमें इतना ह्यूमन एथिकल मॉरल एथिकल इश्यू आ जाएंगे कि वो स्टॉल हो ही जाएगा.
ये तो एकदम मैट्रिक्स जैसा, ये तो एकदम मैट्रिक्स जैसा ही है कि जिसमें फिर आपको पता ही नहीं चलेगा आपके साथ जो हो रहा है वो सच है क्या झूठ है, इसके हाँ. बीच की दूरी खत्म हो जाएगी.
विच इज वॉट आइडियल एआर एंड वीआर, विच इज यू वोंट नो द
डिफरेंस. है ना, ओ
ठीक है. तो उसमें इतना मॉरल एथिकल प्रॉब्लम्स होता है. और द पॉइंट इज कि वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है.
ठीक है,
तो जो हाँ यू नो फॉर अ लॉट ऑफ पेशेंट्स दैट हैव, जैसे तुम अगर पैरालाइज हो गए हो, so they put a chip in your brain na, to stimulate your brain, to stimulate the bodies and the organs and things like that.
Achha.
So already the basic form of this technology already exists. Theek hai, to abhi tum usko 5G ek chip ke sath, tum ek 5G ka wo dalo uske sath, khatam. I mean I'm just making it very simplified, but the idea and the concept already exists. So coming back to your question, the biggest problem at this point ki wo hai ki tumhara jo resolution hai eyes ka, to eyes manenge nahi ki tum dekh rahe ho jo sach hai ki nahi, aur jab tak tumhara eye nahi bolta hai ki tum jo dekh rahe ho sach hai, then you will have issues like motion sickness, won't be a great experience, kyunki tum sab kuch immerse kar rahe ho, to if you can't see anything and all you can see is a really bad image, to tumhe lagega kya experience hai, bahut ganda experience hai. To maybe the GPUs can reach there, but अभी तक स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं आया हुआ है, लेटेंसी है, तो देयर आर लॉट ऑफ अदर इश्यूज दैट आल्सो कम अप अक्रॉस इट. सो
और वो स्क्रीन कितना हीट प्रोड्यूस करेगा,
हाँ
ना, ये भी एक इशू है. तो बेसिकली हम उसको, तो ये आपने मॉरल एथिकल इश्यूज अच्छे बोले, तो इसमें और भी है कि फिर अब सभी लोग मान लो हम इमेजिन करते हैं कि चलो ये हार्डवेयर इश्यूज जब हट जाएंगे तो वो दुनिया तो काफी डिफरेंट हो सकती है, जिसमें काफी इस तरीके के मॉरल एथिकल इश्यूज हो सकते हैं. आप सिर्फ वीआर में ही अगर मान लो हो और आप घर में ही बस बैठे रहते हो और सब लोगों के साथ बात करते हो, ये सब करते हो, तो आप अचानक से एक ही आदमी शायद 10 जगह भी हो सकता है.
हाँ, हाँ.
है ना,
वही है ना,
आदमी को एक जगह होने की जरूरत नहीं है. और मैं अपने किसी एआई को ट्रेन कर सकता हूँ कि यार मैं मीटिंग में हाँ हाँ करता रहता हूँ हर 10 मिनट में, तो करता रहता है. तो वैसे 5-10 मीटिंग में भेज करके उसके बाद में शाम को देख सकते हो कि यार ये पांचों मीटिंग में क्या क्या हुआ था.
वो तो इट्स अ डिफरेंट.
हाँ, तो ये ऐसा सब हो तो मतलब ये गड़बड़ वाला चीज है कि ये कुछ ऐसे नए नए प्रॉब्लम्स आने वाले हैं दुनिया में.
तो रूल्स चेंज होते रहेंगे ना, कि अभी तुम देख लो कि इंटरनेट के जो रूल्स हैं अभी तो बहुत चेंज हो गया है और चेंज होने वाला है. और पर अगर तुम देखोगे तो इंटरनेट इज नॉट मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड, वाइड स्प्रेड इंटरनेट.
15 साल में इतना कुछ हो गया है, मतलब अभी व्हाट्सएप में डबल टिक आया कि नहीं, ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है.
जब टेक्नोलॉजी आता है तो which is the reason why technology is the biggest, you know, we were born in like the probably the most best time era, ki humne dekha hai ki kaisa tha pehle, you know, pranay yaad karta hoga, like we used to like call people on rotary phones, pura exam ka discussion kar hota tha, ab to whatsapp pe hota hai. I mean it's not that different, like you know it was 15 years back where we didn't have mobile phones and now we are completely mobile. So
अभी आप बेसिकली 10 लोगों से एक साथ बात कर ही रहे होते हो प्रैक्टिकली.
हाँ.
जबकि वैसे आप फोन पे तो ऐसा नहीं कर सकते. हाँ. फोन पे तो आप एक आदमी से एक साथ बात कर रहे होते. हाँ. और शहर क्या है ये भी, जैसे इतनी सारी चीजें, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोग्रेस सब शहरीकरण पे निर्भर करता है क्योंकि आपको डेंसिटी चाहिए. हाँ. लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में आप डेंसिटी क्रिएट कर सकते हो बिना फिजिकल वर्ल्ड की डेंसिटी के.
एग्जैक्टली. हाँ, एंड देयर इज नो लिमिटेशन.
हाँ, जो 40 करोड़ लोग माइनक्राफ्ट में है वो एक्चुअली 40 करोड़ एक साथ आ सकते हैं, जो कि उनको असली दुनिया में एक साथ आने की जरूरत ही नहीं.
यस यस, तो उसके लिए बहुत रूल्स चेंज हो गए आई होप. तो वही है कि हम इस टेलीपोर्ट में काम कर रहा है ऐसे चीजों पे, पर हमें पता है कि यू नो मार्केट अभी तक यू नो इवॉल्व नहीं हुआ है, तो हम बहुत क्या बोलते हैं उसको पेरिफेरल चीजें करते हैं जो वी थिंक कैन हैव स्लाइट यूज केसेस, पर ऑन द बॉटम वी ट्राइंग टू बिल्ड एक टेक्नोलॉजी स्टैक
कि आप गेम में रहें जब तक टेक्नोलॉजी कैचअप करे.
हाँ, वो है स्ट्रेटेजी, पर पता नहीं भुट्टे हो जाएंगे तब तक. तो अब तो वही है कि वी वांट फेसबुक टू पुश, बट वी आल्सो डोंट वांट देम टू पुश. ठीक है, तो इट्स लाइक तो क्या है,
ये अच्छी दुविधा
है ना. अच्छी दुविधा, तो वी ऑल बिलीव्ड इन ऑक्यूलस, तो हमने यू नो उनको सपोर्ट किया ये ऑक्यूलस, फिर उन्होंने दे सोल्ड टू फेसबुक, व्हिच इज द राइट थिंग टू डू इफ यू वांट टू मेक मनी. पर वही है कि अगर और कोई कंपनी नहीं आए, फेसबुक नीड्स कॉम्पिटिशन, अगर कॉम्पिटिशन होगा तो there will be some amount of less shitty things जो करेगी Facebook, पर जब तक competition जो अभी है जो नहीं है competition Facebook के लिए, तो देखते हैं क्या होता है. HTC है एक, try कर रही है, Microsoft कुछ कर सकती है, Google ने तो पूरा give up किया हुआ है इस game पे, उन्होंने वो किया था Daydream, वो बंद कर दिया उन्होंने, तो देखते हैं क्या होता है.
ठीक है, तो बहुत सही था विनीत, बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा, और एंटरटेनमेंट का मैंने एक नए रूप से उसे समझने की कोशिश की, तो इसका फ्यूचर में बहुत कुछ अलग तरीके से जा सकता है इसका डायरेक्शन.
हाँ.
तो थैंक यू विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और VR/AR पर इतने इंटरेस्टिंग रूप से हमें बताने के लिए.
थैंक्स सौरभ, थैंक्स,
बहुत मजा आया.
ठीक, थैंक यू.
उम्मीद है आपको भी मजा आया. यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण. तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है. आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं, तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए. और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए पुलियाबाजी@gmail.com पर या फिर @पुलियाबाजी ट्विटर पर. शुक्रिया.